देश विदेश की खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। शनिवार को करनाल में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज से घायल एक किसान की मौत हो गई है। कोटा रेल मंडल ने अपने कर्मचारी के छुट्टी आवेदन पर कोई जवाब नहीं दिया और केबीसी में उसके शामिल होने को लेकर उसके 3 साल का इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दे दिया है। इन खबरों के अलावा आज के पॉडकास्ट में अफगानिस्तान की भी खबर होगी, जहां तालिबान अब पंजशीर पर हमला करने की फिराक में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की जांच को लेकर अदालत ने कैसी सख्त टिप्पणी की है, यह भी बताएंगे आपको आज के पॉडकास्ट में। मौसम का हाल भी सुनाएंगे आपको, साथ ही अवनी लेखरा की भी खबर होगी, जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। आइए सुने आज की पहली खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBTD ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। पहले यह तारीख 31 अगस्त की थी। यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में तकनीकी कमियों के चलते टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने में मुश्किल हो रही थी। CBTD ने एक बयान में कहा कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट के तहत ज़रूरी फॉर्म 3 को जारी करने और इनमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर करने का फैसला किया गया है। करनाल में शनिवार को हुए लाठीचार्ज के दौरान जख्मी हुए रामपुर जटागांव के एक किसान की मौत हो गई। इसके बाद किसानों में आक्रोश है। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने दावा किया है कि पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में किसान की मौत हुई है। किसान का नाम सुशील काजल बताया जा रहा है। वहीं इस आरोप के बाद पुलिस ने अपना दामन बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। गौरतलब है कि करनाल में प्रदर्शन के दौरान वहां के SDM का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे किसानों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देते दिख रहे थे। इसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई किसानों को चोटें पहुंची थीं। कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठना कोटा रेल मंडल के स्थानीय खरीद अनुभाग के कार्यालय अधीक्षक देशबंधु पांडे को महंगा पड़ गया। पांडे को रेलवे प्रशासन ने चार्जशीट थमा दी है, साथ ही 3 साल के लिए उनकी वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल KBC में भाग लेने के लिए कोटा डिवीजन के रेल कर्मचारी देशबंधु पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में रहे थे। इसके लिए पांडे ने अधिकारियों से अवकाश का आवेदन दिया था, लेकिन अधिकारियों ने पांडे के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। इसके बाद पांडे बिना छुट्टी के ही KBC शूटिंग के लिए मुंबई चले गए। पांडे ने KBC में 3,20,000 रुपये जीते, लेकिन मुंबई से लौटने पर 18 अगस्त को उन्हें चार्जशीट थमा दी गई और 3 साल का इंक्रीमेंट बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। रोचक तथ्य यह है कि पांडे को थमाई गई चार्जशीट 9 अगस्त को तैयार की गई थी। चार्जशीट में लिखा गया है कि बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही आप 9 से 13 अगस्त तक गायब रहे। आपका यह रवैया काम के प्रति लापरवाही दर्शाता है। ऐसे में आप पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 9 अगस्त को तैयार की गई इस चार्जशीट में अधिकारियों ने 13 अगस्त तक का जिक्र किया है। यह तभी संभव है जब अधिकारियों को पता हो कि कर्मचारी 13 अगस्त तक नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पांडे ने 13 अगस्त तक का अवकाश मांगा था, जो उसे नहीं दिया गया। तालिबान की नज़र अब पंजशीर पर टिकी है। कुछ दिन पहले उसने पंजशीर घाटी पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में तालिबान के 350 से अधिक लड़ाकों को पंजशीर के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा पंजशीर के फाइटर्स ने कई जेलों को भी तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया था। सूत्रों की माने तो तालिबान एक बार फिर से पंजशीर पर आक्रमण करने की तैयारी में जुटा है। उसने अब पंजशीर की घाटी की सभी फोन लाइन और संचार के दूसरे माध्यम काट दिए हैं। सूत्रों ने कहा कि तालिबान ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अपने विरोधी दलों के बीच संचार रोकने के लिए टेलीफोन और इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं। बता दें कि पंजशीर घाटी ही अफगानिस्तान में एक ऐसी जगह है जो तालिबान के कब्जे से मुक्त है। 20 साल पहले भी तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उस समय भी उसे कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब एक बार फिर वह उसी कोशिश में जुटा हुआ है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड बहुत घटिया रहा है। दिल्ली दंगों की जांच का ऐसा हाल देखकर दिल्ली पुलिस आयोग के लिए दखल की ज़रूरत है। ये टिप्पणियाँ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अशरफ अली नामक एक व्यक्ति के मामले को लेकर की हैं। अशरफ अली पर 25 फरवरी 2020 को सांप्रदायिक दंगे के दौरान पुलिस अधिकारियों पर कथित रूप से तेजाब, कांच की बोतलें और ईंटें फेंकने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह कहते हुए पीड़ा होती है कि दंगे के बहुत सारे मामलों में जांच का मापदंड बहुत घटिया है। ज़्यादातर मामलों में जांच अधिकारी अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस आधे अधूरे आरोप पत्र दायर करने के बाद जांच को तार्किक परिणति तक ले जाने की बमुश्किल परवाह करती है, जिस वजह से कई आरोपों में नामजद आरोपी सलाखों के पीछे बने हुए हैं। एएसजे ने 28 अगस्त को अपने आदेश में कहा कि यह मामला इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पीड़ित स्वयं ही पुलिसकर्मी हैं लेकिन जांच अधिकारी को तेजाब का नमूना इकट्ठा करने और उसका रासायनिक विश्लेषण कराने की परवाह नहीं है। जांच अधिकारी ने चोट की प्रकृति को लेकर भी राय लेने की जहमत नहीं उठाई। मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में एक नाबालिग लड़के को कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने का मामला सामने आया है। ज़िले के अम्बाह तहसील के बाग का पूरा इलाके में 16 वर्षीय एक लड़के को कथित तौर पर कोविड-19 रोधी टीका लगाया गया, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। मामला सामने आने के बाद रविवार को अधिकारियों ने इसकी जाँच का आदेश दिया है। इस संबंध में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चलेगा कि नाबालिग किशोर को वैक्सीन कैसे लगाई गई। मिली जानकारी के मुताबिक कमलेश कुशवाहा के बेटे पिल्लू को शनिवार को मुरैना जिला मुख्यालय के करीब 35 किलोमीटर दूर एक टीकाकरण में यह टीका लगाया गया है, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे और मुँह से झाग आना शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि अम्बाह के डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं की वजह से प्रदेश के 5 नेशनल हाईवे, 15 स्टेट हाईवे और 200 से अधिक सड़कों पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने से संबंधित येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि विदिशा, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, सागर और चंबल संभाग के ज़िले में 24 घंटे में कहीं कहीं पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारत की अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। अवनी निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में टॉप पर रहीं। अवनी ने इस इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 21 निशानेबाजों के बीच 7वें स्थान पर रहकर फाइनल्स में प्रवेश किया था। उन्होंने 60 सीरीज के 6 शॉट के बाद 621.7 का स्कोर बनाया, जो शीर्ष 8 निशानेबाजों में जगह बनाने के लिए पर्याप्त था। अवनी लखेरा पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली 4थी भारतीय खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत को पहला गोल्ड मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में दिलाया था। पेटकर ने पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण जीता था। इसके बाद देवेंद्र झाझरिया ने एथेंस ओलंपिक 2004 और रियो ओलंपिक 2016 में भी जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया। वहीं मरियप्पन थंगावेलू ने रियो खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में 1.89 मीटर कूद कर लगातार स्वर्ण पदक जीता था। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।